प्राप्ति का होने से सारे सद्गुण और सारी सुंदर सुव्यवस्था होने लगती और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं होने से कितनी कुतनी सुविधाएं, एक से एक सुविधाएं मिलती है और आदमी भोग सामग्री में अपने विनाश का सामान पैदा कर लेता। तो ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, शरीर तो मिथ्या है, जलाने वाला है, अंत में चला जाएगा, लेकिन फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए शरीर स्वस्थ रखना, उसके लिए तो भगवान शिव जी ने, भगवान सनत कुमार अथवा और ऋषियों ने स्वास्थ्य की वंचना नहीं करवाई। स्वास्थ्य रखो, लेकिन वो स्वास्थ्य भोग के लिए नहीं। वशिष्ठ महाराज बोलते तीन चीजें बड़ी सुखदायी, बड़ी हितकारी, और वही तीन चीजें बड़ी दुखदायी और विनाशकारी, यौवन, स्वास्थ्य और संपदा। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा ये बड़ी अनर्थकारी है। अगर इसी से भोग भोगते हैं, कूर कपट करते हैं, अधिकार लोलुपता करते हैं और दुनियावी इच्छाओं में अपना आरोग्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपने स्वास्थ्य को, अपने यौवन को खत्म करते हैं, तो ये अनर्थ पैदा कर देगा, वासना बन जाएगी भोगी की, कपटी की मति बन जाएगी। अगर इसी में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना देते हैं तो यौवन हितकारी हो जाएगा, स्वास्थ्य हितकारी हो जाएगा, ऐश्वर्य हितकारी हो जाएगा, कईयों को ईश्वर के मार्ग में ले जाने में ऐश्वर्य काम आएगा, यौवन काम आएगा। तो ये तीन चीजें महा अनर्थकारी है। अगर इसमें लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ना हो तो स्वास्थ्य, यौवन और ऐश्वर्य महापतन करा देता है। मुसोलों ने अभी तक प्रेतों के भटक रहा है, क्या था? यौवन था, स्वास्थ्य था, इटाली का राज्य भी था, अभी प्रेतों के भटक रहा है। राम जी के पास भी यौवन था, बुद्ध के पास भी यौवन था, नरेंद्र जी के पास भी यौवन था, तो उसी को ठीक लगाया तो मुक्तात्मा हो गए और दूसरों के लिए भी पद चिन्ह सुखदायी छोड़ गए। ऐसे मीरा के पास यौवन था, आरोग्य था, ऐश्वर्य था, लेकिन भोगिन बनती तो जैसे और रानियां तबाह हो गई, ऐसे वो मीरा भी उसी में चली जाती। लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का किया तो मीरा तो कोई चेला मुंडिया नहीं, और फिर भी लाखों करोड़ों लोग मीरा के पद चिन्हों पर चलते हैं। मीरा का नाम मिटता नहीं, उसकी सासू का नाम हम जानते नहीं। तो यही चीजें हैं, अगर इनका सदुपयोग कर दिया जाए तो सत्य को पा लेता आदमी, और इनका दुरुपयोग करता है तो दुर्गति को पाता है। और योनियों में स्वतंत्र कर्म करने की छूट नहीं है, केवल मनुष्य योनि में। जैसे पुण्य का फल स्वर्ग भोगेगा, वो पुण्यात्मा नरक में नहीं जा सकता, पाप का फल नरक भोगेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य स्वर्ग में भी जा सकता, नरक में भी जा सकता, ऐसे कर्म करे। यहां भी अपना स्वभाव स्वर्गीय बना सकता है, नारकीय बना सकता है, कर्म स्वर्गीय बना सकता है, नरकीय बना सकता है, भोजन स्वर्गीय बना सकता है, नरकीय बना सकता है, मर जाए तो उसके बाद भी जब तक दूसरी आगे की यात्रा नहीं होती तो प्रकृति में शून्यता में पड़ा रहता है। फिर कुछ स्मृति भी होती तो कोई नए कर्म नया प्रारब्ध नहीं रच सकता है। मनुष्य शरीर तब तक ही रच सकता है अपना नया प्रारब्ध, नया भविष्य, वो उज्जवल भविष्य बना सकता है। मर गया तो उसके बाद जैसी स्थिति होती है चित्त की, जैसे कर्मों का पुण्य होता है, उसी प्रेरणा से उसकी फिर यात्राएं होने लगती। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल देते हैं और चलता रहता है, ऐसे ही 84 लाख जीवों के पीछे भगवान थोड़ी मत्था खपाते रहते हैं। उसकी ऐसी व्यवस्था जमा दी, जिस दिमाग से कंप्यूटर निकले, ऐसे करोड़ों करोड़ दिमाग पैदा करने वाले भगवान की कैसी व्यवस्था हो। कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग से निकला है, ऐसे मनुष्य कई पैदा कर करके विलय कर लेता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर का आविष्कार या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े आविष्कार हुए थे। आदमी स्व शरीर स्वर्ग जाता, देवताओं को मदद कर सकता था, लोक लोकांतर में जा सकता था, पितरों को बुला के बातचीत कर सकता है, अभी ऐसा कहाँ है, बरसात कर सकता था। तो मनुष्य की जो योग्यता है उसका लाखवां हिस्सा मनुष्य ने विकसित किया है। करोड़ों करोड़ों ने अरबों अरबों न्यूरॉन्स हैं, और एक एक न्यूरॉन्स, एक एक जो अपना सेल्स है, कोशिका है, उसमें इतनी ताकत छुपी है सूक्ष्म रूप से कि तुम्हारी एटमिक शक्ति है वो कुछ नहीं। ग्रह नक्षत्रों को, तारों को, सूरज और चंदा को अपने स्थान से हिला डुला सकते हैं, ऐसी शक्ति मनुष्य में भरी। और पूर्व का इतिहास बताता है, शांडिल्य ने सूर्य की गति रोक दी थी, सत्यानुष्या ने सूर्य की गति थाम दी थी, फलाने ऋषि ने कर दिया था। स्वर्ग से गिरते त्रिशंकु को विश्वामित्र ने वहीं ठहरा दिया था, विश्वामित्र ने बाजरी बना दी, अभी अपन खा रहे हैं, मकई बना दी, और भी कई चीजें बनाई, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि का अपन खाते हैं, चावल जौ गेहूं, ऐसे बाजरी मक्का ज्वार ब्रह्म विश्वामित्र की बनाई हुई। विश्वामित्र भोगी राजा थे, भोग से उपरांत आई और योग में लग गए, इतना सामर्थ्य विकसित हो गया। तो ये मनुष्य रूप में तो सब में छुपा है ना, जैसे मेरे गुरुदेव में इतना सामर्थ्य था तो मेरे गुरुदेव के साथ खेलने वाले बच्चे भी तो वैसे के वैसे थे, लेकिन गुरुदेव नहाने जाते नहर में, फिर नहा के निकलते तो बस नाक पकड़ के बैठ जाते। दूसरे लोगों के वो उनके साथ थे लेकिन उनकी बुद्धि ईश्वर में नहीं थी, उनके बचपन में ईश्वर में बुद्धि हो जाती, शांत हो जाते, निसंकल्प हो जाते, ईश्वर को अपना मानते, अपने को ईश्वर का मानते। तो 18 साल की उम्र में वैराग्य और थोड़ी समय में ईश्वर प्राप्ति कर ली। संतों का संग सूझता था, संतों से झूठ कपट नहीं करते थे। आए गए साधु संतों के लिए भोजन, गुरु जी के लिए भोजन, गाय दोना, लीपण करना, वो जमाने में गैस नहीं था तो लकड़ी बकड़ी की व्यवस्था करके चूल्हा जलाना, ये सब सेवा करते थे। फिर विचार सागर पंचदशी ये पढ़ते, और जब गुरु जी आके दूसरे दिन पाठ पूछे और किसी कारण वो याद न रहे तो कान पकड़ के मेरे गुरु जी का, उनके गुरु जी, मेरे दादा गुरु, मेरे गुरुजी का कान पकड़ के ऐसा तमाचा रख देते कि गाल पे निशान लग जाता कि ये स्वामी केशवानंद का पंजा कैसा होता है, लीलाराम जी के गाल पर ऐसा लगता। फिर भी कभी गुरु द्वार छोड़ा नहीं, गुरु में दोष दर्शन किया। कुल मिला के सारे रोग दोषों का मूल है, हमारी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि जो छोड़ जाना है, असत है, दुख रूप है, उसका महत्व घुसा है, जो सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, शाश्वत है, उसकी प्राप्ति का बुद्धि में महत्व नहीं है। तो उसी लिए प्रार्थना, उपासना, सेवा, नहीं तो ऐसे सेवा से, प्रार्थना से कोई भगवान बन थोड़े जाता है। भगवान तो है लेकिन भगवान के प्राप्ति की भूख बनाने के लिए सब करना पड़ता है। भगवत प्राप्ति की भूख हो जाए तो फिर भगवान छुपे नहीं रह सकते। इच्छा के पेट में संसार है तो ही वो भटकाती रहती इच्छा, और इच्छा के पेट में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान इच्छा का पेट चीर कर प्रकट हो जाते। इच्छा गर्भ रहित नहीं होती, इच्छा के गर्भ में कुछ न कुछ होता है। इच्छा के गर्भ में नश्वर पाने को होता है तो जीव भटकता रहता है। इच्छा के गर्भ में अगर शाश्वत की प्राप्ति की मांग हो जाए तो इच्छा का पेट फट जाएगा और शाश्वत प्रकट हो जाएगा। इतना सरल है। इच्छा के गर्भ में बस मन ईश्वर तुम ही मिलो, बस तुम कैसे हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जैसा तैसा हूं तेरा हूं, तेरी कृपा, तेरे बिना मेरे को कैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, पी रहा हूं, कितना अभागा हूं, मरने वाले शरीर की सुविधा में ये नखरेबाजी हो रही है और मरने वाले शरीर के लिए इतनी बेईमानी हो रही, कपट हो रहा है, अभी तक तेरे लिए प्रीति नहीं जग रही है, ऐसा करके प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें, जप ध्यान करें, ईश्वर की ओर पढ़े, योग वशिष्ठ का प्रथम भाग पढ़े, विवेक वैराग्य बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, ये तो करे नहीं और वही अपना अकल होशारी को उसी में लगावे तो खुद भी फंसेगा, दूसरे को भी फंसाएगा। और जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलता है वो खुद भी उन्नत होता है, आप भी मुक्त होता है, दूसरे को भी मुक्त करता है, आप भी तृप्त होता है, दूसरे को भी तृप्त करता है। मूढ़ व्यक्ति परिस्थितियों से तृप्ति चाहता है और बुद्धिमान अपने आत्मा से तृप्त रहता है। मेरे गुरुदेव तो बाप रे, हम तो उनकी चरण रज के काबिल नहीं है, सच्ची बात ही है। ऐसे मेरे गुरुदेव की निष्ठा क्या हो, नैनीताल में गर्मियों के दिनों में एकांत में रहने को आ जाते थे, आश्रम नहीं बना था, तो कहीं भी कहीं छोटा मोटा जैसा हो, वो 15 डुटियाल नेपाल से आते थे, बस अड्डे पे मजूरी करते थे, कोली किसी का सामान उठा के, वो हिल स्टेशन पर तो गर्मियों में सीजन चल जाती है बसों की और कोलियों की, तो 15 डुटियाल उनको बोलते हैं, अपन कूली बोल दो। उन्होंने कोई हॉल भाड़े रखा था तो 32 रुपया था रात को सोने सोने का, तो बोले 2-2 रुपये निकालो, तो 2-2 रुपये निकाले तो बोले 30 होते हैं। तो गुरुजी वहां पेड़ के पास उनकी मीटिंग हो रही थी, गुरुजी अपनी मस्ती में बैठे थे, देखा आए तो गुरुजी खड़े हो गए, बोले भाई 15 तो तुम हो, 30 रुपये तुम्हारे हो गए, 2 मेरे ले लो, मेरे को भी अपना भागीदार बना दो। वो डुट्यालों के साथ रात को पड़े रहते, बोलो कैसी निष्ठा है, कैसे मेरे गुरुदेव की, इतना तो मेरी भी ताकत नहीं जितनी मेरे गुरुजी की थी। उनका झगड़ा भी निपटा है और 3-3 महीने उनके साथ रहे। वो डुट्याल तो हफ्ते में एक बार नहा लिया, नैनीताल की ठंडी में रोज क्यों नहाए, ऐसे लोगों के बीच रात को पड़े रहना, सो लेना, आश्रम तो बना है नहीं, बनाना भी नहीं था उस समय, तो पड़े रहे थे। पाकिस्तान तो 42 में हुआ, ये 47 में हुआ उसके पहले, फिर शायद वो पहले की या बीच में है, लेकिन वो बिल्कुल पक्की बात है। और मैंने ये गुरुजी से पूछा भी, ये मैंने सुना तो गुरुजी ने कहा है, हो गया तो क्या है, कैसी आत्मदृष्टि, ऐसे उड़िया बाबा बैठे थे तो एक दंडी सन्यासी है, अरे कि तुम भ्रष्ट हो, जहाँ तहाँ बैठे रहते हो, ऐसे हो वैसे हो, साधु हो के ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। वो महापुरुष की बुद्धि तो भगवान में, सब ब्रह्म में, सब चित घन चैतन्य है, कोई बुरा नहीं, कोई पराया नहीं, एकांत में रहते, लेकिन कहीं भीड़ हो जाती, कहीं ये होते तो भीड़ में उनको विषयानंद में कि उनके तगड़ा धुआं में भी उनको आनंद आ रहा है, विक्षेप में भी आनंद मना रहे, तो अपन काहे को विक्षिप्त रहो, और भी आनंद रहो अपने आनंद स्वरूप में। तो बोले ऐसे लोग जो नाच रहे हैं, हिजड़े नाच रहे हैं, या लोग नाच रहे हैं, शोर बकोर कर रहे हैं, और तुम ऐसे ही पड़े रहते हो, यहीं रहते हो। तो उसने खूब सुनाई, तो उड़िया बाबा को मानने वाले लोगों को गुस्सा आया कि हम इसको साधु को जरा सुना दें। तो उड़िया बाबा ने कहा, देखो इनको कोई कुछ भी बोलेगा तो फिर मैं इस प्रदेश में से चला जाऊंगा, कभी पैर नहीं रखूंगा, इनको बोलने दो। तो कोई बोला नहीं, वो साधु तो जितना बोलता रहता कुछ सुनाता रहता, उड़िया बाबा उसका कोई विरोध नहीं किया। वो जब सन्यासी मरने को था तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसे बड़े संत को जो समता में टिके इतना अपमान किया भक्तों के बीच, कुछ नहीं बोले, अरे मेरी क्या गति होगी, ऐसे वैसे उसको पश्चाताप हुआ था। मरने की घड़ी आई तो उसने अपने चेलों को भेजा के उड़िया बाबा को बुलाओ, मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं उनके चरण छूंगा, माफी लूंगा। तो उड़िया बाबा के पास खबर आई तो उड़िया बाबा उनके मिलने, चलो भाई चले, पश्चाताप कर रहे हैं, अच्छा है उनका भाव शुद्ध हो गया। तो उसके पहले वो मर चुके थे। तो हाँ, बुढ़िया बाबा किसी के शमशान में नहीं जाते, लेकिन उसके शमशान यात्रा में गए। तो कैसी समता, शत्रु के प्रति कितना शुभ भाव, लोगों के बीच गाली दे और फिर उसकी शमशान यात्रा में जाए। हमारे को भी ऐसे महापुरुषों की कृपा का बहुत बहुत फायदा मिला है। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको परमात्मा बोलते, जिसको रख नहीं सकते उसको प्रकृति संसार बोलते। जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सबका परम मंगल करने वाला है, उसका नाम है परमात्मा। रात को नींद में सो जाते तो उसी में तो आ जाते, लेकिन वहां अज्ञान होता है। जागृत में ओम श्री परमात्मने नमः शांत, अच्युताय नमः, जो अपनी महिमा में जो कहते हो उस परमेश्वर को नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। नमः क्यों बोलना पड़ता है कि अहम मैं करूं, हूं विशेष छू, अपने को विशेष बनाना बहुत घाटा है, एक दूसरे को भिड़ाना बहुत घाटा है। सेवा कर्म योग स्वतंत्र है, भक्ति योग स्वतंत्र है, ज्ञान योग स्वतंत्र है। सेवा के द्वारा ईश्वर को पा सकते हैं, भक्ति के द्वारा पा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा पा सकते हैं, तीनों को थोड़ा थोड़ा लेके भी यहां तो सब चलता है साथ, कठिन नहीं, और इसके सिवाय कोई चारा नहीं। शास्त्र और गुरु की आज्ञा के बिना कोई चारा नहीं। मनमाना करेंगे तो अंदर से पुराने संस्कार हिरण्यकश्यप बना दे, रावण बना दे, मनमाना मैं लंकापति, मैं श्री परमात्मा ने नमः, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। मम स्वरूपाय आनंद स्वरूपाय नमः, प्रेम रूपाय नमः, गुरु रूपाय नमः, शिव रूपाय नमः, अनेक रूपाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओ, 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 क्या कठिन है बोलो, यही तो है सुन। ईश्वर पाना कठिन है? मैं तो इन बच्चों को बड़ा भाग्यशाली जानता हूं। इस उम्र में इन टिनकोड़ों को ऐसा सत्संग और सानिध्य, नासिक में अंजनी पर्वत है, वहां मेरी कुटिया है, पास में एक स्कूल है शांत इलाके में। मैं क्या कितनी फी? बोले 1,95,000 रहना खाना पढ़ना लिखना सब। 1,95,000 पैसे वालों के बच्चे रहते हो? उन बच्चों को भी ऐसा ज्ञान तो नहीं मिलता। 1,95,000 वार्षिक नासिक अंजनी पर्वत, नासिक त्रंबकेश्वर के बीच में थोड़ा अंदर हट के हरे ओम ओम असाधन मत आने दो। जो भी आप साधना करते हैं फिर उसके विपरीत नहीं। साधन भजन में असाधन को स्थान देते नहीं, इसलिए ज्यादा समय लगता है। नहीं तो देरी किस बात की? पुरानी आदत कपट करने की, भिड़ाने की, अधिकार की, इसकी उसकी वाहवाही की, इसलिए सब कठिन हो जाता है। अथर्ववेद का कांड 6 सूक्त 64 और मंत्र पहला, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त कर परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हो। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। ये अथर्ववेद का मंत्र है जिसका अर्थ मैंने सुनाया, ये पढ़ के सुनाता हूं मंत्र। समझानी दुम सम प्रचिदम संभोवा मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजानानं उपासते। इस सूक्त का फिर से अर्थ पढ़ता भावार्थ है, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त करे, परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हो। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। आज गलती क्या होती है, अपना कर्तव्य नहीं निभाते, दूसरे को बोलते तेरा ये कर्तव्य ये कर्तव्य ये कर्तव्य। दूसरे का कर्तव्य दिखाना कोई बड़ी बात, अपना कर्तव्य ईश्वर में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, उनके बताए मार्ग के अनुसार कर्तव्य। मनमाना कर्तव्य नहीं होता है। ये तो शराबी भी बोलेगा मेरा कर्तव्य है दोस्तों को महफिल देना। एक शास्त्र अनुरूप कर्तव्य।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हृदय एक कल्प तरु है, उसे कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त न हो सके?
आपका हृदय कल्प तरु है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आप न पा सके। लेकिन सारे पदार्थ जिसके सत्ता से बन बन के मिट जाते। मैं तो तुमको उधर ले जाना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा घड़ाई पिटाई घुटाई मजबूत चाहिए, बाकी तो दुनिया की चीजें तो संतों के लगाए वटवृक्ष से ही लोगों को दे देते। संसारी चीजें मिलना बहुत साधारण बात है। जो कभी ना बिछड़े, कभी ना मिटे और कोई भी दुख सुख आ जाए तो ज्यों का त्यों जगमगाता रहे, अपना आपा प्राप्त करना ये बड़ी बहुत ऊंची चीज है। कर्तव्य यह है कि मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग ना करें। कर्तव्य यह है कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। कर्तव्य यह है कि दूसरे के पतन में हमारा दिल पीड़ित हो और उसके उत्थान में लग जाए। दूसरा पतित हुआ और हमने उसके पतन का फायदा उठाकर बड़ा बने, ये अकर्तव्य। इसीलिए आज राजनीति वालों की विचारों की हालत आदरणीय नहीं रही। जैसे आपका पूरा शरीर आप ही है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड आप ही एक ही सत्ता। आप अपने पैर को नुकसान करके आंख ठीक नहीं कर सकते, पैर की भलाई में भी आंख की भलाई, पेट की भलाई में भी पैर की भलाई, परस्पर मंगल। कोई बुरे रास्ते जाता है तो उसको सहयोग नहीं करें, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते लाने में सहयोग करें। बड़ा सरल है, बेईमानी के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अहम पोषने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती और टिकता नहीं। हम तो भगवान का विरोधी है तो सभी का विरोधी है, लेकिन हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करके हम त्याग और परस्पर भाव यंत्र सभी आपको चाहेंगे। आप सभी के प्यारे हो जाएंगे, जो सभी का प्यारा है उसी के नाते आप संसार में अपना कर्तव्य करो। बड़ा सरल है, भाग के कहीं चले जाने से भी काम नहीं बनता, और संसारी दलदल में पड़े रहने से भी काम नहीं बनता। ज्ञान युक्त, संयम युक्त, स्नेह युक्त, सेवा युक्त, सत्संग युक्त, बस यूं उड़ान, इतनी बातें बस पकड़ लो। तुम जो करोड़ों जन्मों में जो चीज नहीं मिली इसी जन्म में मिली, करोड़ों बाप नहीं दे सके, करोड़ों मित्र नहीं दे सके, वो इन चीजों से ही इसी जन्म केवल लक्ष्य जिसको छोड़ नहीं सके।